हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। यहाँ हजारों कहानियाँ हैं आपके लिए। अबीर जोया को देखकर अपनी भावनाओं पर काबू नहीं रख पा रहा था। वो सबके सामने उसे घूर रहा था। जोया बेहद खूबसूरत लग रही थी। वेल, अबीर को आज अपनी सौतेली माँ से मिलने जाना था और वहीं जोया को भी उस कॉलर से मिलने जाना था जिसने उसे फ़ोन करके अरहम के बारे में जानकारी देने के लिए कहा था। अबीर नाश्ते की टेबल से जोया को अपनी आंखों में बसाता हुआ अपनी सौतेली माँ से मिलने के लिए निकल गया था। अबीर के जाने के बाद जोया ने राहत की सांस ली और तब वो अकरम से बोली, भाई मैं भी चलती हूँ, मुझे कुछ ज़रूरी काम है। अकरम जोया की बात सुनकर चौंक गया। बेटा, तुम कहाँ जा रही हो और क्यों? आखिर क्या बात है? भाई, आप क्यों परेशान हो रहे हैं? मुझे कुछ ज़रूरी काम है, मैं जल्दी आ जाऊंगी। नहीं बेटा, मैं तुम्हें अकेली कहीं भी बाहर नहीं जाने दूंगा। तुम अच्छे से जानती हो, अरहम इस देश और अब इस शहर में भी आ चुका है और उसकी नज़र 24 घंटे हम लोगों पर है। जब तक मैं उसे ढूंढ नहीं लेता और उसे मौत के घाट नहीं उतार देता, तुम दोनों इस घर से कहीं नहीं जाओगी। बस अकरम ने जैसे अपनी बात फाइनल कर दी थी, तभी जोया बोली, भाई मुझे हॉस्पिटल जाना है कुछ चेकअप के लिए और मुझे एक इंजेक्शन भी लगना है जो 4 मंथ में किसी भी प्रेग्नेंट लेडी को लगता है। डॉक्टर ने कल ही बताया था। मैंने उन लोगों से कहा था कि आप लोग मुझे आज ही लगा दो, लेकिन मेरे शरीर के कमज़ोर होने की वजह से उन्होंने मुझे मना कर दिया था और बोला था कि आप 24 घंटे के बाद आ जाना, तब तक दवाइयाँ वगैरह खाकर आप स्टेबल हो जाओगी। अकरम ने उसकी बात सुनकर गहरी सांस ली और बोला, ठीक है, मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। भाई, आपको मेरे साथ चलने की कोई ज़रूरत नहीं है, इस वक्त रिया को आपकी ज़्यादा ज़रूरत है, मैं खुद जा सकती हूँ। और रही बात उस अरहम की, तो मैं अब उससे नहीं डरती हूँ। डरना उसे हम लोगों से चाहिए, हम लोगों को उससे नहीं, जोया ने आंखों में आग लाते हुए कहा। जोया की शदीद नफ़रत की तपिश अकरम और रिया ने काफ़ी अच्छी तरह से महसूस की थी। उससे डरकर मैं छिपने वाली बिल्कुल नहीं हूँ और मैं अकेले जा सकती हूँ और अपना ध्यान भी रख सकती हूँ। मैं जा रही हूँ, आप फ़िक्र ना करें, मैं जल्दी लौट आऊँगी, जोया ने अकरम से कहा। अकरम कुछ कहने ही वाला था कि रिया ने उसका हाथ पकड़कर उसे रोका और जोया से बोली, आप ठीक कह रही हो जोया दी, हमने कुछ गलत नहीं किया है। अगर किसी ने कुछ गलत किया है तो वो उन भाइयों ने। अगर किसी को अपना मुंह छिपाना चाहिए तो वो उन लोगों को छिपाना चाहिए, हम लोगों को नहीं। और जोया दी, आपकी हिम्मत देखकर मेरे अंदर भी एक नई हिम्मत ने जन्म ले लिया है। आप जाइए और मुझे पूरी उम्मीद है आप आराम से इस दुनिया का सामना कर सकती हो। रिया ने जोया के हाथ पर हाथ रखा और वो एक दूसरे को देखकर मुस्कुराने लगीं। अकरम उन दोनों को बड़े ही गर्व के साथ देख रहा था। उसने भी आगे बढ़कर जोया के सिर पर हाथ रखा और कहा, जाओ बेटा जाओ, और याद रखना, कहीं भी कभी भी अगर तुम्हें अपने इस भाई की ज़रूरत पड़े तो केवल एक बार याद कर लेना। जोया ने आगे बढ़कर अकरम और रिया दोनों को हक किया और अपना एक थैला लेकर निकल पड़ी। उसने वो थैला कल रात को ही तैयार कर लिया था। वहीं दूसरी ओर अबीर अपनी सौतेली माँ के घर के सामने पहुँच चुका था और उसने देखा कि उनके घर का दरवाज़ा खुला हुआ था। वो हैरान रह गया था कि ये दरवाज़ा क्यों खुला हुआ है और वो अंदर चला गया। उसने देखा कि उसकी सौतेली माँ अपने बंगले के हॉल में पड़े एक शानदार सोफे पर बैठी हुई थी। अबीर राठौड़ को देखते ही वो उठ खड़ी हुई और जाकर उसके गले लग गई। अबीर ये सब देखकर चौंक गया था, क्योंकि जिस औरत ने आज तक उसके सिर पर प्यार से कभी हाथ तक नहीं रखा था, वो औरत आज कैसे उसके गले मिल रही थी। अबीर ने कहा, कहिए क्यों बुलाया है आपने मुझे? तब वो औरत बोली, यहाँ आओ बेटा, मैं तुम्हें कुछ दिखाती हूँ। अबीर जैसे ही आगे बढ़ा वो हैरान रह गया। सोफे पर एक आदमी बैठा हुआ था और वो अबीर को देखकर मुस्कुरा रहा था। अबीर अपनी सौतेली माँ से बोला, ये कौन है? ये सुनकर उसकी माँ ने अपनी गर्दन नीचे कर ली थी। तब अबीर एक बार फिर से बोला, क्या हुआ, आप कुछ बोल क्यों नहीं रही हैं? तब वो आदमी सोफे पर से उठा और अबीर के करीब जाकर खड़ा हो गया और अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए बोला, हाय, मेरा नाम अरहम, अरहम ठाकुर, और ये जो औरत आपके सामने खड़ी है, आपकी सौतेली माँ, वो मेरी सगी माँ है। ये सुनते ही अबीर के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगीं। उसे तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि इतने सालों के बाद उसकी सौतेली माँ का कोई बेटा आ निकलेगा। तब उसकी सौतेली माँ रोने लगी और बोली, अबीर बेटा, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मेरी वजह से तुम्हारी माँ इस दुनिया में नहीं रही और मैं कभी तुम्हारी माँ नहीं बन पाई थी बेटा, और आज इतने सालों के बाद अपने बेटे को देखकर मुझे एहसास हुआ कि अपने मतलब के लिए मैंने क्या कुछ नहीं खो दिया। अपने तीन बच्चे और यहाँ तुम, काश मैं अपने बच्चों के साथ ही रहती। इस ऐशो आराम के लालच में आकर न तो अपनी न अपने बच्चों की और न ही तुम्हारी जिंदगी बर्बाद करती। मुझे माफ़ कर दो बेटा, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, ऐसा कहकर वो फूट फूट कर रोने लगी। अबीर की आंखों में खून उतर आया था। वो शुरू से ही उस औरत से नफ़रत करता था और अब जब उसे ये पता चला कि उसकी सौतेली माँ के पहले भी बच्चे हैं जिनमें एक बेटी और दो बेटे हैं, तो उसका दिमाग सुन्न हो चुका था और वो खाली खाली नज़रों से कभी अपनी सौतेली माँ को देखता तो कभी अपने सामने खड़े लंबे चौड़े आदमी को देखता जो न चाहते हुए भी उसका भाई बनकर सामने आ चुका था। अबीर के दिमाग ने काम करना बंद कर दिया था और तभी अचानक से उसकी सौतेली माँ उसके पैरों में आ गिरी थी और रोकर गिड़गिड़ाते हुए बोल रही थी कि अबीर बेटा, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो और सब कुछ भूल कर मेरे बेटे को भी अपना लो और फिर हम सब एक साथ मिलकर हंसी खुशी एक परिवार की तरह से रहेंगे। अबीर को तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि इस बात का क्या जवाब दे और वो अपनी सौतेली माँ से बोला, मैं आपको अपना फ़ैसला फ़ोन पर बता दूंगा, अभी मैं चलता हूँ। तब अबीर एक गहरी नज़र अरहम पर डालता हुआ वहाँ से निकल गया था और अरहम के चेहरे पर एक स्माइल तैर गई थी। फ्लैशबैक हुआ ये था कि अरहम ने अपने एक भरोसेमंद आदमी को अबीर के पूरी डिटेल निकालने के लिए कहा था और वो अबीर के बिजनेस से लेकर उसके पूरे परिवार की डिटेल्स निकाल लाया था। और जब अरहम अबीर के परिवार की फ़ोटो देख रहा था तब एक फ़ोटो में उसे एक चेहरा काफ़ी जाना पहचाना सा लगा था और वो बड़े ही ध्यान से उसे देखने लगा था। तब अचानक उसके जिस्म में एक बिजली सी कौंद गई थी और उसने फटाफट अपने पॉकेट में से अपना पर्स निकाला और उसमें उसकी और उसके भाई बहन की उसकी माँ के साथ खींची हुई आखिरी फ़ोटो देखने लगा था। और जल्दी ही उसे पता चल चुका था कि अबीर की सौतेली माँ उसकी सगी माँ है। इतने सालों बाद उसे अपनी माँ से कोई लगाव नहीं था, बल्कि वो तो अपनी माँ के दिए गए धोखे को आज तक नहीं भुला था, लेकिन अब उसने अपने इस नए रिश्ते को अपने लिए यूज़ करने के बारे में सोच लिया था और वो सीधा अपनी माँ के घर जा पहुँचा था और उसे अपने रिश्ते का सबूत दिखाकर उसने अपना रिश्ता साबित कर दिया था। उसकी माँ इतने दिनों के बाद अपने सगे बेटे को देखकर इमोशनल हो चुकी थी। आखिर उसकी जवानी कब तक उसका साथ दे सकती थी? अब जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ती जा रही थी उसे अपने बच्चों की कमी महसूस होने लगी थी और अब अचानक से अरहम के आ जाने से उसे अपना अकेलापन दूर करने का एक रास्ता नजर आने लगा था।
इसीलिए उसने सोचा क्यों ना अपने सब बच्चों को एक कर दिया जाए और सब एक परिवार की तरह हंसी खुशी रहें। यही सोचकर उसने अबीर को अपने पास बुलाया था, लेकिन अबीर सोचकर बताता हूँ कहकर वहाँ से चला गया था। वो अकेले अब कोई फ़ैसला नहीं ले सकता था। उसने ज़ोया को अपनी ज़िंदगी से जोड़ लिया था, सो वो अब जो भी करेगा ज़ोया को बताकर ही करेगा। वो ये मन में ठान चुका था। वहीं दूसरी ओर शमशेर सिंह जी ने राजवीर को अपने पास बुलाया था, क्योंकि राजवीर ने अनुराधा मर्डर केस में मीडिया में जो स्टेटमेंट दी थी कि अनुराधा को कुछ लुटेरों ने लूटपाट करने के लिए मार डाला था, ये बयान वो हजम ही नहीं कर पा रहा था। तब राजवीर ने कहा, जी सर, एक्चुअली कल रात मुझे खबर मिली थी कि मुंबई से लोनावाला जाने वाले हाईवे पर एक लाश पड़ी हुई है और आप तो जानते हैं कितने ही केस आए दिन उस हाईवे पर होते रहते हैं। शायद अनुराधा मैडम छुट्टियां मनाने के लिए वहां गई होगी और किसी लुटेरी गैंग का शिकार हो गई होगी। तब शमशेर जी थोड़ा गुस्सा होकर बोले, बस करो राजवीर, इतने काबिल ऑफिसर होकर ये क्या, तुमने शायद ये हो गया होगा। तुम एक मंझे हुए एजेंट हो, तुम्हारी जिंदगी में ये शायद शब्द कब से आ गया है। मेरी बात कान खोल कर सुन लो, जल्द से जल्द अनुराधा मर्डर केस की इन्वेस्टिगेशन अच्छे से करो और सारे सबूत मेरे सामने पेश करो, उसके बाद इस केस को क्लोज करना। जब मैं सारे सबूत देख लूँगा और ये देखूँगा कि कितनी सच्चाई है तुम्हारे इस शायद और उस लुटेरों वाली कहानी में। राजवीर ने पहली बार शमशेर सिंह को इतना गुस्से में देखा था और वो हाँ मैं सर हिलाता हुआ वहाँ से निकल गया था। वहीं दूसरी ओर ज़ोया अबीर राठौड़ के घर से निकल चुकी थी। जैसे ही ज़ोया बाहर निकली उसने देखा कि दो गार्ड्स उसके साथ साथ चलने लगे थे। ज़ोया उन गार्ड्स को देखकर हैरान रह गई थी और बोली, मेरे साथ क्यों आ रहे हो तुम दोनों? तब उन गार्ड्स में से एक ने सिर झुकाकर जवाब दिया, मैम, अबीर सर का ऑर्डर है, आपकी सेफ्टी के लिए हम दोनों को तैनात किया गया है। ये सुनते ही जोया का पारा हाई हो गया और बोली, ये अबीर राठौड़ आखिर समझता क्या है खुद को। और जोया उन गार्ड्स पर झुंझलाते हुए बोली, मुझे किसी सिक्योरिटी की कोई ज़रूरत नहीं है, आप दोनों जाइए। लेकिन वो गार्ड वहाँ से जाने के लिए तैयार नहीं हुए थे।